पर चढ़ा तो उसने देखा वहां एक रीच बैठा हुआ है, ऐसा ही रहता कहानी में। तो वहां पर एक रीच बैठा, अब वो और डरा कि नीचे वो शेर आ रहा है, उधर ये रीच बैठा हुआ है। फिर भी उस रीच ने कुछ नहीं किया उसका। उस रीच ने कहा कि तुम डरो मत, तुम मेरी शरण में आए हो, इसलिए मैं तुम्हारा बिगाड़ नहीं करूंगा, ना तुम्हारा बिगाड़ होने दूंगा। शेर नीचे आके बैठ गया। उसने सोचा कभी ना कभी तो उतरेगा ये। अब इतने में जो है रीच को थोड़ी सी झपकी लग गई। देखो बच्चों की कहानी है, रीच को जो है झपकी लग गई, नींद आ गई उसको। तो शेर ने धीरे से क्या कहा उस आदमी से कि देख तेरे को अगर बचना हो ना तो इसको नीचे पटक दे, ये तो सो ही गया, मैं इसको खा लूंगा तो तू बच जाएगा। उसने कहा हाँ बहुत अच्छा। देखो आप, जिसने उसके ऊपर उपकार करा है और उसी के लिए तैयार हो गया वो, और तैयार होकर जैसे ही रीच को धक्का देने का सोचा उसने, उतने में रीच की नींद खुल गई। अब वो सिटपटा के बैठ गया। अब उसको भी नींद तो आ रही थी आदमी को, वो भी सो गया। वो जैसे ही सोया तो शेर ने रीच से कहा कि देख तेरे को जब नींद आई थी तब इसने तो गिराने को तैयार हो गया था, अब तेरा नंबर है, गिरा दे, मैं तुझे नहीं खाऊंगा, इसको ही खा के चले जाऊंगा। तब मालूम उस रीच ने क्या कहा था, वो रीच होकर के भी मनुष्य की तरह बोला था कि मैं धोखा खा सकता हूं लेकिन धोखा देऊंगा नहीं, मैंने धोखा खाया है, आप ठगाएं दुख उपजे, आप ठगाएं सुख उपजे, पर ठगियां दुख होए, कबीर दास ने लिखा। अपने ठगाए कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे को ठगेंगे तो कई जिंदगियों में दुख भोगना पड़ेगा, अपन तो ठग गए सो ये कई जिंदगी थोड़ा बहुत दुख भोग लेंगे और क्या फर्क पड़ने वाला। ऐसा जो है अभिप्राय का जो खोटापन है या अभिप्राय में जो छल करने की हमारे मन में दूसरे को तकलीफ पहुंचाने की जो भावना है वही वास्तव में हमारी अपनी माया कषाय है। ऐसा अपन को स्वयं अपने भीतर झांक के देखना चाहिए। जब भी अपन कोई इस तरह की चीज अपने को कई बार ऐसा प्रकट करते हैं जैसे हम नहीं हैं वैसा प्रकट करते हैं तो उसके पीछे अभिप्राय क्या है, ये हमें जरूर ध्यान में रखना आवश्यक है। नहीं तो कई बार ऐसा होता, अब जैसे कोई अपन गड़बड़ काम कर रहे हों और बच्चे आ जाएं तो अब बच्चों के सामने थोड़ी करेंगे, नहीं तो वो क्या सीखेंगे। हम अपनी गंदी आदतों को सबके सामने प्रकट तो ना करें कम से कम, अन्यथा दूसरे भी जो है, कोई भी पिता शराब पीता होगा लेकिन बच्चे को शराब पीते देखना पसंद नहीं करेगा वो, ना वो कभी अपने बच्चे से कहेगा कि तुम पीना, सिगरेट पीता होगा तो छुपा करके बच्चे के आने पर छुपा लेता होगा वो, देख लो आप कोई भी इसमें से। कहने का आशय क्या है, वहां पर अगर हम छुपा रहे हैं किसी बुरी आदत को तो उसके पीछे उद्देश्य है कि कोई इसको फॉलो ना करे, वहां हमारा अभिप्राय खोटा नहीं है। जहां हमारा अभिप्राय खोटा है, छल करने का भाव है, वहां पर माया कषाय है। ये थोड़ी सी अपने को ध्यान में रखकर अपने परिणामों को खुद तौलते रहना चाहिए। भैया बात तो सीधी सीधी ये है कि अपने परिणाम अपन खुद ही जान सकते हैं और भगवान जान सकते हैं, हमारे ख्याल से तीसरा कोई तो ठीक ठीक नहीं जान सकता। आंख से देखी कान से सुनी भी कोई भरोसा नहीं कि सच्ची हो, उसमें लिखा तो यही, क्योंकि आप क्या जानो अभिप्राय क्या था, आपने देखा कुछ हो और अभिप्राय कुछ हो, दो लोग बड़े प्रेम से हंस रहे थे और आप सोच रहे कि हमारे ऊपर हंस रहे थे, अब लियो जो जाल फंस गए एक और, अब भी बेचारे अपने कोनो मामले में खुश हो रहे थे और आपने ऐसा अभिप्राय ले लिया तो अब क्या करेंगे आप। ऐसा संभव है तो आंख से देखी और कान से सुनी भी कोई जरूरी नहीं है कि वो सच ही हो, अभिप्राय क्या था। इसलिए जोर हमारे यहां पर आचार्यों ने अभिप्राय पर दिया है, अभिप्राय में खोटापन नहीं हो। हम बिल्कुल कैसे देख निर्मल आरसी, क्या लिखा उसमें पूजा में, उसके पहले वाली लाइन क्या है, मैं लिख करके लाया था, देखो मुझे याद नहीं है, बता दे रहा हूं। हाँ ऐसे नहीं, करिए सरल त्यूं जोग अपने देख निर्मल, देखो आपसे भी नहीं बनो। मन वचन काय ऐसे सरल करो जैसे कि निर्मल आरसी अर्थात दर्पण है, जैसा मुख होगा वैसा वो दिखा देगा। हमारा चित्त भी ऐसा ही निर्मल हो कि उसमें कोई आकर के और जैसा है वैसा अपने आप को देख ले, इतना निर्मल हमारा हृदय हो जाए और दूसरे के हृदय हम जो है वो झांक करके देखें, तो जैसा वचन में है वैसा मन में है, वैसा ही शरीर में है, जो क्रिया कर रहे हैं वही अभिप्राय है, वही वचन में भी है। इस तरह से जो है ये सरलता हमारे जीवन में आ सकती है। अब अपन समझ लेते हैं कि सरलता क्या चीज है। ये तो अपन ने मायाचारी समझ ली कि मायाचारी कैसे अपन कर लेते हैं, लेकिन सरलता हमारे जीवन में कैसे आए और सरलता के मायने क्या है। अपन कह तो देते हैं कि सरल होना चाहिए, लेकिन सरलता के एक मायने हैं ईमानदार होना, टू ऑनेस्ट, एक मायने ये। दूसरे मायने हैं स्पष्टवादी होना, टू स्ट्रेटनेस, और तीसरे मायने हैं उन्मुक्त हृदय होना, वार्म हार्टेड, बहुत खुले दिल से मिलना, किसी से भी मिलना। वही मिल सकता जो भीतर से सरल होगा, नहीं तो वो कोई ना कोई मास्क, कोई ना कोई चेहरा लगा के मिलेगा कि इनसे इस तरह मिलो, इनसे इस तरह मिलो, इनसे इस तरह मिलो, पता नहीं इनको नहीं तो हमारी ओरिजिनलिटी मालूम पड़ जाए। तो ऐसे ना मिलना पड़े, उन्मुक्त हृदय, हार्ट वार्म, सॉरी वार्म हार्टेड, ऐसा। और फिर चौथे नंबर कहते सादगी, सिंपलिसिटी। ये चार चीजें जीवन में आए तो सरलता आती है, ईमानदारी आनी चाहिए। लेकिन ईमानदारी के साथ मुश्किल ये है कि ठगाए जाते हैं। ईमानदार रहने में आज जो है वो बहुत मुश्किल होती है कि अगर अपन सरल और ईमानदार बनो तो लोग हमें ठग लेते हैं। तो क्या हम ठगाए जाने पर अपनी ईमानदारी को छोड़ दें क्या? ये हमें विचार करना है। ये हमारे मन में आ सकता है कि महाराज जी आप तो कह रहे हो सो ठीक है, मगर आज के संसार में ईमानदारी से कैसे काम चलता है? क्या किसी का काम नहीं चलता ईमानदारी से? बहुत मुश्किल होती ईमानदार आदमी को आज के समय में जीने में। लेकिन भैया बाहर से भले ही उसे मुश्किल हो, लेकिन एक आंतरिक जो संतोष है वो क्या ईमानदार व्यक्ति को कमती मिलता है क्या? बाहर से भले ही उसे थोड़ी बहुत पीड़ा मिलती हो, लेकिन अंदर मैंने किसी के साथ छल नहीं किया, मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं छाया, चाह ये चीज क्या कमती बात है? ये क्या ईमानदारी का सुख क्या कमती है क्या? ऐसा विचार करना चाहिए। बाबा भारती का उदाहरण सबको मालूम है, बच्चे लोग पढ़ते हैं, सबने पढ़ा होगा है? उनके लिए जो है उनका घोड़ा चुरा के ले गया था वो डाकू, और भिखारी के वेश में ले गया था। तब बाबा भारती ने क्या कहा था कि इस घटना को किसी से नहीं कहना, क्योंकि तुम अगर इस छल को किसी से कहोगे तो फिर लोग भिखारी व्यक्ति के प्रति उदार होना बंद कर देंगे, उसकी मदद करना बंद कर देंगे। इसके बाद भी बाबा भारती ने अपनी ईमानदारी नहीं खोई। मेरा कहने का आशय ये है हम ईमानदार रहें, भले ही हमें जो है थोड़ी सी चोट खानी पड़े। मेरी मृदुता बहुत गई रगड़ी मसली, मेरी मृदुता गई रगड़ी मसली है, पर नहीं हुई कठोर, लगता है असली है। अगर हमारी मृदुता और सरलता को बाहर से तकलीफें प्राप्त होती हैं तब भी क्या हम उसको छोड़ देंगे? ऐसा हमें विचार करना चाहिए। और ईमानदारी को इनोसेंट भी कह सकते हैं, बहुत भोला भालापन जिसको अपन कहते हैं। आज के समय में बहुत कठिन है ये सब बातें, पर फिर भी मेरा कर्तव्य है कि अपन इन सब पे बैठ के विचार करें। विचार कर रहे हैं जो जितना कर सके, 100% तो कोई कर ही नहीं सकता, पर यदि शुरुआत करते हैं तो क्या बुराई है, कर सकते हैं। बहुत भोला भालापन हमारे भीतर में हो, कैसे? जैसे बच्चे लोगों के अंदर होता है। बच्चे लोग गलती भी करते हैं और वे सहज रूप से स्वीकार भी कर लेते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक पिता ने जो है अपने छोटे से बेटे से कहा, जाओ, बाहर से कोई आवाज दे रहा था, पिता को, तो जाओ कह दो कि पापा घर में नहीं है। तो मालूम उसने क्या कह दिया था जा करके, पापा कह रहे हैं कि कह दो पापा घर में नहीं है। अब उसको क्या मालूम, यह कहलाता है इनोसेंट होना, यह कहलाता है बहुत भोला भालापन। एक और उदाहरण आता है इसके बारे में, एक बहुत सीधा साधा, बहुत भोला सा, बहुत अज्ञानी प्रकार का व्यक्ति था, बाल बाल सब टेढ़े मेढ़े, चेहरा भी ऐसे ही, कपड़े भी ऐसे ही। एक दिन वो चले जा रहा था रास्ते से, उसको एक दर्पण का टुकड़ा मिल गया, आईने का आधा था, तो उसको उसने उठाया, पहुंचा उसको, फिर उसमें देखा, उसने देखा उसमें तो उसको अपना ही चेहरा दिखा, और अपना चेहरा भी बड़ा बेकार सा, बाल बाल बिखरे। तो मालूम क्या कहता, कहने लगे इन गुणों में तो कूरे में डरे डरे रहो। अब बताओ उसमें देख करके अब उसको ये समझ में नहीं आया कि किससे कह रहे हो। ऐसा उदाहरण जब मैंने पढ़ा तो लगा कि ये कहलाती है सरलता, ये कहलाता है भोला भालापन। इतने सहज और इतने सरल जो है बहुत कठिन है। वो उदाहरण ही ऐसा है। और दूसरा मैंने आपसे कहा कि बहुत स्पष्टवादी होना चाहिए, अपने दोषों को भी हम उतनी ही आसानी से कह सकें, ये सामर्थ हमारे भीतर हो तो हम सरल हो जाएंगे। सरल व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। वर्णी जी का ये उदाहरण सरलता का, आज अगर वर्णी जी का नाम बुंदेलखंड में लिया जाता है तो मैं तो समझता हूँ भैया उनके अपने प्रेम और उनकी अपनी सरलता, इन दो बातों से लिया जाता है। वरना तो बहुत लोग हुए और किसी के हृदय में उनके लिए कोई जगह बन पाई हो, ऐसा तो बहुत कठिन है। पर वर्णी जी के पास अपना ये गुण था। एक बार सभा में बैठे थे तो किसी ने जो है वर्णी जी को पूछ लिया कि वर्णी जी भिंडी खाओ चाहिए कि नहीं, भिंडी भक्ष है कि नहीं है, अवक्ष है। और वर्णी जी भिंडी खाते, अब ऐसा प्रश्न पूछ लिया भरी सभा में, तो जवाब तो बाद में दिया, पहले क्या बोले, कहने लगे भैया मुझे तो भाव उसे तो खात हूं। अब बताओ, मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैं खाता हूं, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं, ये मेरी कमजोरी है। और दूसरी बात, बाबा जी खाते हैं इसका मतलब अवक्ष तो नहीं है। सीधा भी कह सकते थे कि अवक्ष नहीं है, लेकिन अपनी कमजोरी बताते हुए कि भैया अभी हम छोड़ नहीं पा रहे, हम भी खाते हैं। ये सरलता जो है, ये स्पष्टवादिता व्यक्ति के भीतर उसे आसानी से सरल बनाती। और तीसरी चीज जो मैंने कही थी कि बहुत उन्मुक्त हृदय। उन्मुक्त हृदय के मायने क्या है, यही कि किसी के सामने हमें कुछ कहना पड़े, किसी के सामने कुछ और कहना पड़े, ऐसा ना हो, जो कहें सबके सामने एक जैसा ही कहें। तब कहीं कोई अपने को बंद नहीं होना पड़ेगा, कहीं कोई अपने को कुछ छुपाना नहीं पड़ेगा, कोई दुराव नहीं रहेगा उसमें। दुराव या छिपाव कब होता है, जब हमारे भीतर कहीं छल होता है, तब हम उन्मुक्त नहीं हो पाते। एक उदाहरण इसका भी है, वर्णी जी का उदाहरण है, जैसे अभी शुरलक जी महाराज ने सुना है। उन्होंने क्या किया, एक बार किसी सभा में गए तो वहां पर एक बोली ले ली, 300 रुपया की बोली ले ली। अब डबल नहीं है जेब में एक, और ले ली बोली 300 की। घरे आए तो बाई जी को नहीं बताई कि डांटे ने बाई जी कि तुम इतने रुपया की बोली ले आए। उदारता बहुत थी, सरलता भी थी, पर इस भय से अभिप्राय खोटा नहीं था, लेकिन एक भय था कि बाई जी इसके लिए पता नहीं अच्छा मानेंगे कि नहीं। तो मालूम क्या किया उन्होंने, 3 रुपया मिलते उनको या 3 आने मिलते थे ये भी, तो काय के लिए कि फल फूल ले लियो और खा लेना, तुम पढ़ते हो इसलिए। तो उनने वे 3 आना बचाव शुरू कर दे, वो फल वाले की दुकान पे जाना बंद हो, और वे 3 आना 3 आना इकट्ठे कर दो, कर वो शुरू कर दो कि 300 हो जाए, 100 चुपचाप चुका दें, भाई जी से कहने ही नहीं। पर अब ये 3 आना कितने दिन में इकट्ठे हुई है सोचो, मगर वे जुड़ना शुरू हो गए। भाई जी ने देखा
कि इसके व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन आ गया है। देखो अपन स्वयं भी समझते इस चीज, अगर अपने भीतर कहीं छल है तो व्यवहार में परिवर्तन आए बिना नहीं रहे।
और अनुभवी व्यक्ति होवे, बुजुर्ग लोग होते तो वे फौरन समझ जाते, भाई जी को थोड़ा थोड़ा मन में हुआ था, सो उनने सीधे जाके उनसे कुछ नहीं कही, वर्णी जी से वो फल वाले से कही कि काय गणेश प्रसाद आउत है कि नहीं, कहने भाई जी भी तो बरका के उतर से निकल जात, अबे ते तरफी आउते नहीं है। हाँ उसकी दुकान के पे जात रोज जाते थे क्योंकि पैसे मिले हैं तो फल लेंगे और खाएंगे। समझ गए कि बात कुछ है, तो घर पे आकर के और उनके वहां जो बाजोटा चौकी रखी रहती थी उस पे देखा तो उसमें एक पासबुक मिल गई, पैसा जमा हो रहा है। अब काबात किराने हो रहे जानी मालूम, आए वापस तो हाथ में पासबुक थी, कहा भैया कितने एक जमा हो गए। अब आप क्या छुपा नहीं सकती, अब डायरी तो बहुत आन, और तुमने फल खाना बंद कर दिए, ये पैसे काय के लिए जोड़ रहे, तो फिर अब छुपाने की कोई बात ही नहीं थी, सब प्रकट था। कहने लगे भाई जी ऐसी ऐसी बात है, तो उस दिन भाई जी के आंसू आ गए, हे भैया सब संपत्ति तुम्हारे नाव हमने आज ही से करी, लेकिन हमारे साथ रहते हुए ये मिथ्या व्यवहार न सीखो, ऐसी बात जो है कह दी। आंसू आ गए और कहा कि आज से तुम हमारे पुत्रवत तो थे ही और हमारी संपत्ति भी तुम्हारे लिए, जहां जितनी दान देना हो सो देव, लेकिन ये मिथ्या व्यवहार हमारे पास रह के न सीखो। ऐसा जो है उन्मुक्त हृदय वो ही रह सकता है जिसका व्यवहार मिथ्या नहीं होता। हम भी जो है अपने ऐसे मिथ्या व्यवहार को छोड़ने की कोशिश करें तो हमारे जीवन में भी सरलता आने में देर नहीं लगेगी। बस एक चीज और बची, सिंपलिसिटी, सादगी। सादगी मतलब तड़क भड़क नहीं, दिखावा नहीं, अरे भैया अब जैसे हैं वैसे ही, तो अब तुम चाहे खूब रगड़ रगड़ के और धो ले पोंछ ले मो और सफेद सफेद लगा ले कछु, तो भी जैसे रंग है ऊं सही रहे, नहीं बताओ आप। लेकिन प्रयत्न कितना रहता, भारी प्रयत्न रहता, हम जैसे हैं वैसे दिखें इसका प्रयत्न नहीं रहता, हम जैसे नहीं हैं वैसे दिखें इसका प्रयत्न बहुत रहता। तो जैसे हैं वैसे भी नहीं रह जात, और जैसे बनो चाहत वैसे तो बनो नहीं पात, दो ही दिन से गए, समझ लो बहुत स्पष्ट सी बात आपसे कह रहे हैं। जो अपनी वास्तविकता है उसको हम ज्यों का त्यों अगर प्रकट कर दें, ये कहलाती है सादगी, जिसमें कहीं कोई आडंबर नहीं है, जिसमें कहीं कोई प्रदर्शन नहीं है, जैसी बात है वैसी की वैसी। कबीर दास के जीवन का एक उदाहरण है, छोटे छोटे उदाहरण से जल्दी समझ में आ जाए। उनके बेटे ने एक दिन परेशान होकर उनसे कहा कि आपके इस भजन पूजन कीर्तन से घर गृहस्थी नहीं चल सकती, घर में खाने की बहुत मुश्किल हो रही है और कोई काम धंधा है नहीं, हमने तो जा सोची है कि अब चोरी करो चाहिए। उनके लड़के ने कबीरदास से कहा तो कबीरदास कहने लगे अरे तुमने जी पहले क्यों नहीं बताई। अब उस लड़के को बहुत आश्चर्य हुआ कि जी इतने भजन पूजन करने वाले और कह रहे कि तुमने पहले क्यों नहीं बताई, मतलब जी भी समर्थन कर रहे हो उसका। तो कबीरदास ने और आगे बढ़ के कहा, कहने लगे कब चलना है। तो उसने कहा कब चलना, आज ही चलेंगे, रात में चलेंगे। उन्होंने कहा हो ठीक चले, अपने लड़के के साथ कबीरदास भी चले, काय के लिए जा रहे, चोरी करने के लिए जा रहे, ठीक है इसमें क्या बात है। गए और उसने लड़के ने जो है जैसे घुसा जाता है तो एक छेद करके उसमें से घुसा और कहने लगे सुनो आप बाहर खड़े रहना जब तक हम नहीं लौटे, और अगर कोई खटपट की आवाज हो गई तो हमें खबर दे देना। कहले हाँ ठीक है इसमें क्या, इतना काम तो हम कर ही देंगे, बाहर खड़े अपने आराम से भजन कर रहे। हाँ और वो भीतर घुसा और उसने जो है पोटली बाहर जैसे ही फेंकी तो ने देख ली कि हाँ सब सामान बांध के ये बाहर आया। कहले सुनो सब जने सो रहे हुई हैं। कहले हाँ सब सो रहे, तो कोई को नहीं पता लगी। कहले नहीं कोई को पता नहीं, अरे एक आध को उठो तो जगा के कह रही होती, आप बताओ। कहने लगे कि ऐसे होती क्या चोरी, चले बता दी होती, अरे नहीं बता के आओ। सवेरे से जब उनका सामान नहीं मिलेगा तो नाहक बहुत परेशान होगी, कह के आओ कि हम ले जा रहे हैं। अब बताइए ऐसा व्यक्ति चोरी कर सकता है क्या? ऐसा जिसका सादगी भरा जीवन है, ऐसा सरल जिसका जीवन है, वो उसके द्वारा पाप हो नहीं सकता। ये सादगी जो है वो हमें पाप से बचाती है, सरलता जो है वो हमें पाप से बचा लेती है। लेकिन आज आज तो हम आडंबर में और दिखावे में जीने की चेष्टा ज्यादा करते हैं और उसके चलते और बहुत सारे पाप कर लेते हैं, खबर भी नहीं अपने को हो पाती है। तो भैया इस तरह से अगर हम अपने जीवन में सरलता लाएंगे तो कोई बहुत विशेष कठिन बात नहीं है कि हमारा जीवन अच्छा ना बने। और विशेष मैं आपसे क्या कहूँ, हम स्वयं के जीवन में झांक करके देखें कि हमारे जीवन में कहाँ कहाँ खोट है, कहाँ कहाँ हमारे अभिप्राय में किस क्षण जो है वो मलिनता आ जाती है, या किस क्षण हम अपने जीवन में और कुटिल हो जाते हैं। सब पहचानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं। दूसरे को कभी भी ये नहीं कहना कि वो छली है, कपटी है, ऐसा कहने से भी शायद उसे दुख होगा। वो स्वयं स्वीकार करे कि हाँ सचमुच मैंने छल किया है, तब भी जो है अगर उसमें लिखा कि अगर कोई अपने छल को हमारे सामने और स्पष्ट प्रकट कर दे तब उसे क्या करना, उसे क्षमा कर देना और उसे आगे के लिए और धैर्य बढ़ाना। एक बहुत छोटी सी घटना आपसे कहूँ हमारे अपने स्वयं के जीवन की, समय 35 मिनट हो गए, भोजन आपकों का ठीक है, सही कह रहे बन्नी जी, कह रहे कि अब अच्छी बात सुन भी मैं कहा। तो हम 77 की घटना है, 78 की घटना है, पाठशाला में जाते थे तो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे पाठशाला में। तो वहां पर एक बार क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे 100 बच्चे बैठे पढ़ रहे हैं। अब छोटे बच्चों की तो आदत होती है, बिजली चली गई तो बिजली चली गई तो अब वो क्या करेंगे, किसी ने सीटी बजाना शुरू कर दी, किसी ने हो हो करना शुरू कर दिया। अब हम चुपचाप बैठे, अब क्या करें। थोड़ी देर के बाद बिजली आ गई, आ गई तो हमने कहा कि देखो जितनी भी जो छोटी छोटी बिटिया लोग हैं वो तो खड़े हो और जाओ, तुम्हारी छुट्टी, तुम तो मुंह में हाथ डाल के विसिल बजा नहीं सकते, ये तो पक्का है, इसलिए तुम्हारी छुट्टी। अब जो बच्चे बचे उनमें से हमने कहा कि देखो हम आपको जैसी घटना है वैसी बता रहे हैं। हमने कहा देखो जिसने सीटी बजाई हो या जिसने हो किया हो जल्दी से हाथ ऊंचा कर दो। मगर किसका साहस, अरे बहुत साहस चाहिए, देखो तो मजा, छल करते समय लज्जा नहीं आती, छल प्रकट हो जाए तो लज्जा आती है, झूठ बोलते समय लज्जा नहीं आती, झूठ प्रकट हो जावे तो लज्जा आती है, पाप करते समय लज्जा नहीं आती, पाप प्रकट हो जाए तो लज्जा आती है। ऐसा तो संसार है, ऐसा तो हमारा संस्कार है, आनी चाहिए थे गलत करते समय लज्जा और आती है गलत प्रकट होने पर लज्जा। अगर पहले ही लज्जा आ जाती तो क्यों ऐसा कार्य करते। पर अब वो डर रहे हैं कि आज तक तो हमने सच्ची बोल करके चोट ही खाई है, इनके सामने सच्ची बोलेंगे तो पता नहीं क्या होगा। किसी ने नहीं की हिम्मत, कोई नहीं बोला। मैंने कहा ऐसे काम नहीं चले, सब खड़े हो जाओ। बच्चे खड़े हो गए, मैं एक एक के पास आऊंगा और मेरे तरफ देख करके बोलो। अब तो बहुत बहुत मुश्किल था, पहले वाले बच्चे के पास पहुंचे वो सिर नीचे किए हुए, मेरे तरफ देख करके बोलो मैंने नहीं बजाई, तो उसकी आंख में आंसू आ गए, कहता मैंने नहीं बजाई। दूसरे वाले के पास तो मैं पहुंचे ही नहीं और वो वहीं से दूसरा वाला कहता हमने नहीं बजाई, बहुत दुखी हो करके कहता। और तीसरा वाला तो समझ लो कि बस मुंह पकड़े हुए है, रोने रोने को है। इसके पहले कि मैं चौथे वाले के पास पहुंचूं, पांच बच्चों ने जो पीछे पीछे खड़े थे चुपचाप से नीचा किए, हाथ ऊपर कर दिए, हमने बजाया। हमारे पास आएंगे तब क्या स्थिति बनेगी, इससे पहले ही हाथ ऊपर कर दिया। अब पांचों को निकाल लिया बाहर और बाकी सब जाओ, सबके सामने अगर कुछ कहेंगे तो दुख पहुंचेगा। पांच रुक जाओ, अब भी पांचों थर थर कांप रहे, देखो आप, और बाकी सब बाहर चले गए, लेकिन सब कांच में से देख रहे थे बाहर का होता क्या है, उसमें दरवाजे लगे थे उसमें। अब हम चाहते भी ये थे कि वो देखें, लेकिन हम ये भी चाहते थे कि ये बच्चे ये ना सोचें कि इतने बच्चों के सामने और हमारे साथ इस तरह का व्यवहार कर दिया। वर्णी जी की बहुत बड़ी फोटो वहां पर सामने लगी हुई थी मंदिर में। मैंने कहा सब मेरी तरफ हाथ मत जोड़ो, वहां बाबा जी की तरफ हाथ जोड़ो और उनसे कहो कि अब जो है मंदिर में हम ऐसा काम नहीं करेंगे, करेंगे तो फौरन बता देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। उन्होंने पांचों ने जो है और ऐसा कर दिया। अब वो सोच रहे थे अब क्या होगा, अब कुछ भी नहीं, हमने पांचों को शाबाशी दी कि तुमने स्वीकार कर लिया, इसलिए अब जाओ बढ़िया बढ़िया से। उस दिन के बाद फिर जितनी भी बार बिजली गई, एक भी बच्चे ने तो हो हो नहीं किया, एक ने भी तो विसिल नहीं बजाई। आखिर बात क्या हुई, आपने व्यक्ति की सरलता को अगर स्वीकार कर लिया, उसे शाबाशी दे दी, तब व्यक्ति के अंदर और सरल बनने की भावना आएगी, और अगर आपने उसकी कुटिलता के प्रकट हो जाने पर उसे और नीचा दिखाने की कोशिश की, तो भैया कोई भी अपने छल को प्रकट नहीं करेगा और छल करता ही चला जाएगा, सरल होने का प्रयास ही नहीं करेगा। हम अपने बच्चों को अगर भी सरलता से अपने दोषों को स्वीकार करते हैं तो शाबाशी देने से नहीं चूकें। बड़े लोगों को भी जो है, और अगर कहीं किसी का छल प्रकट हो जाए, वो स्वयं कर दे, तो उसे शाबाशी दें, उसकी गलती ना माने, क्योंकि गलती तो की है पर उस गलती को स्वीकार कर लेना, उस गलती से मुक्त हो जाना है। हम सब जो है कषायों से ग्रसित हैं, संस्कारवश हैं। अगर कोई अपनी कषायों को कम करने की कोशिश कर रहा है तो वो उसके लिए शाबाशी का ही काम है। इसी भावना के साथ कि हम सब एक दूसरे की सरलता की प्रशंसा करेंगे और स्वयं भी सरल होने का प्रयत्न करेंगे, उसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि मंदिर।
तम तम नाश वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो आप पर भास वेखो मानु सेवकानी है।